नमस्कार भारत, 14 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं रेहान फदर। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में संकेत दिए, जलवायु समझौते पर कर सकते हैं अपने रुख में बदलाव।
Something could happen with respect to the Paris Accord. We'll see what happens.
बताएंगे अमृत सेन पर बनने वाली फिल्म क्यों है विवादों के घेरे में।
हमको बोला है कि द फिल्म विल गेट ए यूए सर्टिफिकेट, लेकिन हमको चार जगह में भी बैठाना पड़ेगा उनके वर्ड्स के ऊपर। अमृत सेन मेंशन गुजरात राइट्स के बारे में बोला था, क्रिमिनलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द गुजरात राइट, नाउ वो गुजरात नहीं बोल सकते हैं।
और विंबलडन में सेरेना नहीं, उनकी बहन वीनस खेलेंगी फाइनल।
I couldn't have asked for more, but I'll ask for a little more. You know, one more win would be amazing. It won't be a given, but I'm going to give it my all.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश सुप्रेती से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते पर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। पेरिस की यात्रा पर गए ट्रंप ने कहा कि वो देखेंगे कि इस संबंध में क्या कुछ हो सकता है। ट्रंप ने पिछले महीने 2015 के पेरिस समझौते से बाहर आने की घोषणा की थी। उन्होंने तब कहा था कि वो नया समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जिससे अमरीकी उद्योगपतियों का नुकसान न हो। चीन के प्रमुख राजनीतिक विरोधी और नोबेल पुरस्कार विजेता लू शियाओबाओ का निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। 61 साल के शियाओबाओ की हिरासत में ही मौत हो गई। शियाओबाओ की मौत कई अंगों के काम बंद कर देने की वजह से हुई। शियाओबाओ चार्टर 08 के सह लेखक थे, जिसमें चीन में मुक्त लोकतांत्रिक संवैधानिक शासन की मांग की गई थी। इस दस्तावेज पर 2008 में चीन के 300 से अधिक बुद्धिजीवियों ने दस्तखत किए थे। चीनी अधिकारियों ने शियाओबाओ को एक साल बाद गिरफ्तार कर लिया था और बाद में राजद्रोह के आरोप में 11 साल की सजा दी थी। उन्हें 2010 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन चीन ने उन्हें पुरस्कार लेने जाने की इजाज़त नहीं दी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। शियाओबाओ के निधन पर दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उस व्यक्ति के निधन की खबर से दुखी हैं जिन्होंने अपना जीवन लोकतंत्र के लिए समर्पित कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्वी एशिया के निदेशक निकोलस वेकलिन ने उन्हें मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाला योद्धा बताया है। वेकलिन ने कहा,
The world is losing a human rights champion, someone who has dedicated his life to...
दुनिया ने मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाला चैंपियन खो दिया है। उन्होंने अपना जीवन न्याय और आज़ादी पाने के लिए समर्पित कर दिया। चीन की सरकार ने उन्हें चुप कराने की हर संभव कोशिश की। उन्हें इलाज के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी। ये थे एमनेस्टी इंटरनेशनल के निदेशक वेकलिन के शब्द। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वो यूरोजोन के लिए बजट तय करने के लिए बातचीत करने की इच्छुक हैं। साथ ही वो यूरोजोन के लिए वित्त मंत्री नियुक्त करने के फ्रांस के प्रस्ताव से भी सहमत हैं। उन्होंने यूरोप को स्वतंत्र और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। मर्केल ने कहा,
Wir wissen, dass wir angesichts vieler Entwicklungen in unserer Nachbarschaft auch die
हम जानते हैं कि यूरोप के आसपास कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच यूरोप का भाग्य हमें अपने हाथ में लेना होगा। हमें सफल होने के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा और तरक्की देनी होगी। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र में चर्च के पदाधिकारियों का कहना है कि जिहादियों से मिल रही धमकियों को देखते हुए वे अपनी गतिविधियां सीमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर ये कदम उठाया जा रहा है। भारत में वन्यजीव कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाघों की मौतों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। भारत में इस साल अब तक 67 बाघों की मौत हुई है। उधर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का कहना है कि पूरी रिपोर्ट नहीं मिलने तक बाघों की मौत की वजह नहीं बताई जा सकती। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें मिली सजा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो अगले साल फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैक्सिको में हिडाल्गो प्रांत के तिजायुका शहर में नकाबपोश बंदूकधारियों ने बच्चों की जन्मदिन पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करके रेहान फजल का। करीब डेढ़ महीने पहले ही पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने की घोषणा करने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। फ्रांस के दौरे पर गए ट्रंप के इस यू टर्न पर बीबीसी संवाददाताओं का भेजा विवरण दे रहे हैं दिनेश उप्रेती।
छह हफ्ते का समय बहुत लंबा नहीं होता, कम से कम अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राय बदलने के मामले में तो ये कहा ही जा सकता है। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अस्थिर मिजाज और मौसमी मूड को भांपना किसी के लिए भी टेढ़ी खीर है। राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार यूरोप के दौरे पर गए ट्रंप ने पेरिस समझौते पर यू टर्न लेते हुए संकेत दिए कि जलवायु परिवर्तन समझौते पर उनकी तरफ से फुल स्टॉप नहीं लगा है और अभी भी कुछ किया जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप के तेवर बदले हुए दिखे। उन्होंने हालांकि समझौते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जितने भी शब्द कहे वो राहत देने वाले थे। पेरिस समझौते के संबंध में कुछ किया जा सकता है, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, लेकिन हम इस बारे में आने वाले समय में बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले ट्रंप के देश के इस समझौते से पीछे हट जाने से जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने की मुहिम को झटका लगा था। लेकिन तब ट्रंप ने कहा था कि पेरिस समझौते से बाहर निकलकर वो अमेरिका फर्स्ट के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी कहा कि ट्रंप के इस नजरिए का वो सम्मान करते हैं। मैक्रों ने कहा,
Nous connaissons nos désaccords. Nous les avons exprimés et partagés à plusieurs reprises.
हम जानते हैं कि हमारे मतभेद क्या हैं। हमने कई मर्तबा उनका जिक्र भी किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम इनके बारे में आगे भी बातचीत जारी रख सकते हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के किए गए फैसलों का बहुत सम्मान करता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस समझौते से जुड़ा हुआ हूं और ये सुनिश्चित करूंगा कि इस बारे में और क्या किया जा सकता है। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। मई में इटली के सिसिली में G7 देशों के सम्मेलन में ट्रंप ने पेरिस समझौते से हटने के संकेत दिए थे और बाद में अपने देश जाकर इस समझौते से बाहर निकलने का ऐलान किया था। इस बार संकेत देने की जगह पेरिस है, देखना होगा कि अमेरिका पहुंचकर उनका मिजाज कैसा रहता है।
डोनाल्ड ट्रंप का विचार परिवर्तन।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
सिक्किम की सीमा के करीब डोकलाम क्षेत्र में जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं और भारत और चीन के बीच तनाव है, ऐसे में चीन ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सकारात्मक भूमिका निभाने की बात कही है। चीन ने कश्मीर मुद्दे को भी छेड़ा है और कहा है कि वहां हालात तनावपूर्ण हैं, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर की ओर गया है। भारत ने भी दो टूक जवाब देते हुए चीन की इस पेशकश को खारिज कर दिया है। इस बीच भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों ने चीन के बयान का स्वागत किया है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
चीन की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर भूमिका निभाने को लेकर कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीन के बयान को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए और कश्मीर समस्या को हल करने के लिए आगे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन और अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह कहते हैं कि OIC, यूनाइटेड नेशंस और विश्व के दूसरे फोरम्स को भी आगे आना चाहिए और भारत पर दबाव डाला जाए कि वो हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर की समस्या को हल करें।
हम चाहते हैं कि चीन ने जो आज बात कही है, इसी तरीके से सलामती के काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं और यूनाइटेड नेशन और OIC भी सामने आ जाए वंस फॉर ऑल, ताकि भारत को कहा जाए कि अगर सभी का ये कहना है कि हम सालसी के लिए तैयार हैं, हम सालसी करेंगे और हम चाहेंगे कि आप दोनों मुल्कों में जो तनाव है ये खत्म हो।
उधर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कश्मीर के अलगाववादी पाकिस्तान की शह पर काम करते हैं और यही वजह है कि अलगाववादी पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। बीजेपी के विधायक और पार्टी के युवा अध्यक्ष रविंदर राणा कहते हैं कि चीन जिस तरह की चाले चल रहा है वो हमें मंजूर नहीं है।
वही वो कश्मीर के मुद्दे पर मुदाखलत की बात कर रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। चीन जो है ये इस समय बहुत ही शैतानी की चाले चल रहा है, एक शैतान की तरह काम कर रहा है जो हमको किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। चीन से हम कहेंगे कि आप जो है तिब्बत को खाली करो। देखिए जो अलगाववादी नेता है ये हमेशा पाकिस्तान की डायरेक्शन पर काम करते हैं और इस पाकिस्तान जो है ये चीन की गोदी में बैठा है।
जानकार हलकों का मानना है कि जिस तरह से भारत सरकार ने कश्मीर का मुद्दा ही अब एक तरह से बंद किया है तो ये बात फिर यकीनी है कि कश्मीर के अलगाववादी नेता इस तरह के बयानों को उस सत्र पर ले जाना चाहते हैं जहां कश्मीर समस्या को उभारा जा सके। कश्मीर यूनिवर्सिटी के राजनीतिक मुद्दों के जानकार गुल मोहम्मद वानी कहते हैं कि चीन ऐसे बयानात पहले भी देता आया है और अलगाववादी ऐसे बयानों को अपने लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। तहम भारत ने चीन की इस पेशकश को ठुकरा दिया है। भारत ने कहा है कि ये देवेश पक्ष मामला है और पाकिस्तान के लिए बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता गोंग शांग ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के सवाल पर बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। शांग ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दक्षिणी एशिया के दो अहम देश हैं लेकिन कश्मीर में तनावपूर्ण हालात इस विवाद पर सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
भारत, चीन, कश्मीर और तनाव, इन सभी पर आज दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मसले पर सभी दलों के साथ चर्चा करेंगे और ताज़ा हालात पर जानकारी भी देंगे। हरिता कांडपाल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से बात की और पूछा कि ऐसे समय में चीन का कश्मीर मुद्दे से जुड़ा बयान आना, जब सिक्किम के पास भूटान की सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं, क्या कश्मीर के मसले को हवा देना है?
इस वक्त ये बात करना इसलिए अलग नजर आता है क्योंकि इसका परिपेक्ष बहुत अलग है। आप देखें कि मंगलवार को भारत के विदेश सचिव ने सिंगापुर में ये कहा कि वो जानते हैं कि मसला उलझा हुआ है, पर इस तरह के मसलों को चीन और भारत ने कई बार पहले भी सुलझाया है आपस में। उसके जवाब में विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने बीजिंग में ये कहा कि ये मसला बिल्कुल आम नहीं है, ये अलग है क्योंकि भारत की सेनाएं इलीगल तौर पर चीन की भूमि पर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और ठीक उसी टिप्पणी से उन्होंने इस बात को भी जोड़ दिया कि वो कश्मीर में भी जो परेशानी है उसमें भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता करने की ऑफर करते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट में दो चीजें कहना और उसमें ये परिपेक्ष होना कि करीब तीन सप्ताह से भी ज्यादा ये जो स्टैंड ऑफ सिक्किम में है, जो भूटान, भारत और चीन के ट्राइजंक्शन पर, परिपेक्ष इसका मतलब बदल देता है। ये कोशिश है चीन की कि कश्मीर मसले को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए उस ओर, और ये अपने आप में एक अच्छा संदेश नहीं है।
चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार में एक आलेख छपा था जिसमें कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया गया और कहा कि जिस तरह भारत ने जो है गैर कानूनी तरीके से चीन की सीमा में प्रवेश किया है भारतीय सैनिकों ने, उसी तरह कश्मीर में भी ऐसा कुछ हो सकता है।
जिस अखबार का आपने अभी अभी जिक्र किया ग्लोबल टाइम्स, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार है और वो हमेशा से इस तरह की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करता है भारत के प्रति। उसी अखबार में पिछले सप्ताह वहाँ की एक चाइना नॉर्मल वेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोंग हैं, उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें बड़ी एक अजीब सी उन्होंने बात ये कही कि क्योंकि भारत की सेनाएं भूटान की तरफ से उनके डिस्प्यूटेड एरिया में दाखिल हुई हैं, तो शायद उसी लॉजिक को इस्तेमाल करते करते शायद भविष्य में चीन भी पाकिस्तान की तरफ से डिस्प्यूटेड कश्मीर में क्या शामिल हो सकता है। तो ये दो चीजें आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। कश्मीर और भूटान का कोई आपस में एक जैसा तालमेल नहीं बनता। भूटान के साथ भारत के संबंध जो है वो बहुत अलग हैं, वो हमेशा से हैं। ब्रिटिश समय था जब वो ब्रिटिश इंडिया का प्रोट्रेक्टोरेट होता था, उसके बाद 1949 की संधि हुई और 2007 में संधि हुई, तो वो जो हमारे संबंध है भूटान के साथ, यहाँ भारत की सेना हमेशा भूटान में रहती है, उनको चीन की सेनाएं पाकिस्तान में घुसकर कश्मीर में कुछ करने की बात बिल्कुल एक तरह से कोई उसका कंपैरिजन ठीक नहीं लगता। केवल ये कोशिश है कि किस तरह से जो जो संबंध है उनको और उलझाया जाए और उसको एस्केलेट किस तरह से किया जाए।
पाकिस्तान को चीन के इस रवैये से क्या फायदा हो सकता है?
पाकिस्तान के लिए ये अपने आप में टिप्पणी जो है विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन की बीजिंग में, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो तो हमेशा कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना चाहता है, और करीब पिछले 3 या 4 साल से जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए हैं चीन में, तब से चीन का जो दोस्ती है वो पाकिस्तान से वो बहुत बहुत अलग रुख उसने लिया है।
पहले की सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार का जो पूरा रुख है वो चीन को लेकर थोड़ा बोल्ड हुआ है, और आज सर्वदलीय बैठक है, किस तरह की राजनीतिक चर्चा की उम्मीद करते हैं?
ये कह सकते हैं कि रवैया बदला है, वो केवल चीन के प्रति ही नहीं बदला है, पूरी विदेश नीति में जो तेजी आई है तो वो शायद एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है कि पिछले 10 या 15 वर्षों में जो भारत की छवि है वो धीरे धीरे बदली है, हमारा आर्थिक वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ा है, धीरे धीरे जो बदलाव भारत में आया है उसकी रिफ्लेक्शन है कि आज की सरकार जो है वो चीन के आगे झुकने या दबने की सोच से काम नहीं कर रही।
ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप नमस्कार भारत सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आइए अब नजर डाली जाए आज के भारतीय समाचार पत्रों में किन खबरों को जगह मिली है। समाचार पत्रों की समीक्षा के साथ हैं दिनेश उप्रेती।
जी रेहान जी, इंडियन एक्सप्रेस ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के संकट को प्रमुखता से छापा है। अखबार लिखता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 26-27 जुलाई को चीन जा सकते हैं। इसी खबर के साथ अखबार ने चीनी मीडिया के 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़े 5 दशक पुराने संपादकीय और तस्वीरें छापने की खबर भी प्रकाशित की है। भारत चीन विवाद पर हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक खबर पहले पन्ने पर है। अखबार लिखता है कि मोदी सरकार आज प्रमुख विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर पूरी जानकारी दे सकती है। 17 जुलाई को संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। इसी मुद्दे पर द हिंदू का शीर्षक है चीन से सीमा विवाद सुलझाने को कूटनीतिक प्रयास। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स के 32,000 पर पहुंचने की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि आर्थिक सुधारों के आगे बढ़ने और महंगाई दर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर होने से निवेशक बाजार में जमकर निवेश कर रहे हैं। गंगा में कूड़ा फेंका तो 50,000 का जुर्माना। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स और कई सारे अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कल केंद्र सरकार से कहा कि वो गंगा में कूड़ा फेंकने वालों से ये जुर्माना वसूले। इंडियन एक्सप्रेस में ही काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के पानी में के बीच फंसे गैंडों की तस्वीर पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छपी है। पूर्वोत्तर के असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भारी बारिश और बाढ़ से कई मौतें होने की खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जजों की नियुक्ति पर कलकत्ता हाईकोर्ट की नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी की खबर को पहले पन्ने पर छापा है। खबर के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा है कि खाली पदों पर नियुक्ति जल्दी नहीं होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश उप्रेती आपका। आगे बढ़ते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से तथ्यों पर आधारित सफाई की जनता दल यूनाइटेड की अपेक्षा को जानकार जनता दल यू द्वारा उनके इस्तीफे की मांग के ही बतौर देख रहे हैं। सीबीआई छापेमारी के बाद जनता दल यू उस मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं खड़ी है जैसा कि उसकी दूसरी सहयोगी कांग्रेस। बुधवार को तेजस्वी के सुरक्षाकर्मियों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की थी। तेजस्वी की सफाई के बावजूद इस घटना की आलोचना कर जनता दल यू राजद से और दूरी बनाती दिख रही है। तो क्या जनता दल यू ने राजद से पल्ला झाड़ने का मन बना लिया है? क्या इसकी वजह बस लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या कुछ और? ये जानने की कोशिश की पटना से मनीष शांडिल्य ने इस रिपोर्ट में।
सीबीआई छापेमारी पर लंबी चुप्पी के बाद जदयू ने मंगलवार को लालू और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के नए मामले पर तथ्यों और प्रमाणिकता के साथ सफाई मांगी थी। बुधवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत में कई बिंदुओं पर अपनी बातें रखी, लेकिन जदयू तेजस्वी के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। मंगलवार को जदयू ने सफाई पेश करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी, लेकिन अब पार्टी के नेता प्रवक्ता नीतीश कुमार की छवि का हवाला देते हुए राजद से जल्द फैसला लेने को कह रहे हैं। दूसरी ओर बुधवार को तेजस्वी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पत्रकारों के साथ हुई मारपीट मामले में भी जदयू तेजस्वी की सफाई के बावजूद उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। जदयू का यह रुख क्या इसका संकेत है कि वह राजद से रिश्ता खत्म करने की ओर बढ़ रही है? इस सवाल पर जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद कहते हैं,
राष्ट्रीय जनता दल के दो नेता वो सिवान के हों या नवादा के हों, इन दोनों नेताओं पर जब आपराधिक मुकदमे दायर हुए तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने हमारा सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया, तो फिर तेजस्वी के मामले में नरमी क्यों? जो आरोप आप पर लगे हैं वो कागज कलम के माध्यम से आप उसका बिंदुवार तार्किक आधार पर आप उत्तर दें, ताकि राज्य की जनता में जो संशय की स्थिति बनी हुई है वह संशय की स्थिति दूर हो।
वहीं राजद गठबंधन टूटने को मीडिया की कयासबाजी कह रही है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं,
मीडिया में कयास लगाए जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट है इंटैक्ट है, कयास में सच्चाई नहीं है नंबर एक, और नंबर दो, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम इन सभी बिंदुओं का जवाब हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता के मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर जिन सवालों को आप उठाना चाह रहे हैं हम उसके जवाब तथ्यात्मक जवाब हम देने के लिए उसका तैयार लगातार दे ही रहे हैं।
नीतीश कुमार की पार्टी आज भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी तरह का समझौता नहीं करने की बात कह रही है, लेकिन खुद नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर कुछ अलग चीजों को सामने लाता है। जैसे कि नीतीश लालू से 1994 में तब अलग हुए थे जब उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था, और वही नीतीश 2014 में लालू के साथ हो गए जब वे भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए जा चुके थे। ऐसे में जानकारों का मानना है कि सवाल महज भ्रष्टाचार का न होकर भविष्य की राजनीति से जुड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद,
देखिए मामला करप्शन का नहीं है, पॉलिटिकल ज्यादा है। बार्गेनिंग पोजीशन नीतीश की चार कम हो गई है, वो बाहर भी एक्सप्लोर कर चुके हैं अपने पॉलिटिकल, इसको नहीं पाया कि हम नेशनल लेवल के बड़े लीडर इमर्ज कर पाएंगे। आज के वक्त अगर कुछ ऐसी क्राइसिस हुई तो राजद बड़ी पार्टी इमर्ज करेगी, तो नीतीश ये सोच रहे हैं, ये प्लानिंग हो सकता है उनके अल्टरनेट में हो कि वो दोबारा बीजेपी ही के साथ चले जाएं। अब वो बीजेपी कमजोर बीजेपी नहीं है 2005 वाली।
जदयू के बयान राजद पर दबाव बढ़ाने वाले बयान हैं, लेकिन राजद अपने पुराने रुख पर कायम है कि तेजस्वी के इस्तीफे का तो कोई सवाल ही नहीं है। राजद नेता इशारों विशारों में अपनी पार्टी की ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गेंद फिर से जदयू के पाले में है, अब फैसला जदयू को ही करना है। मनीष चांदेली, BBC पटना।
बीजेपी और इसके सहयोगी संगठनों के लिए गाय और हिंदुत्व लगातार इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इन शब्दों से खुश नहीं दिखाई देता। बोर्ड ने एक फिल्म निर्माता से गाय, गुजरात, हिंदू और हिंदुत्व शब्द को म्यूट करने के लिए कहा है। सेन की मशहूर किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियन से प्रेरित इस डॉक्यूमेंट्री को फिल्म निर्माता सुमन घोष ने निर्देशित किया है। सुमन से हमारे साथी राजेश जोशी ने बात की और पूछा कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाने के बारे में कब सोचा।
देखिए, मैं कंसेप्चुअलाइज किया था इसको 2002 में, जो फर्स्ट पार्ट शूट किया था, एंड तब तो मेरा मेन एम था टू हैव अ पर्सन लाइक अमर्त्य सेन, उनका लाइफ एंड वर्क, बिकॉज यू नो आई कॉल हिम लाइक अ रेनेसा मैन, एंड ऐसा लोग यू नो नॉट बिकॉज ऑफ ही इज अ नोबेल लॉरेटर, उन लोगों को हाईलाइट करना इस जमाने में बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इसीलिए मैं शुरू किया था। एंड देन 2017 में मैं और एक बार शूट किया था, फर्दर फुटेज शूट किया, क्योंकि लास्ट 15 साल में नॉट ओनली इंडिया में, सारे विश्व में जो चेंजेस हुआ है पॉलिटिकली और अदरवाइज, इट्स अ डिफरेंट प्लेस द वर्ल्ड इज नाउ, और अमर्त्य सेन जैसे आदमी का एक व्यू और उसका जो काम सारे जीवन का, आई थॉट दैट इट इज अंडर थ्रेट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन व्हिच ही हैज वर्क। सो ये फिल्म जो आर्गुमेंटेटिव इंडियन है मेरा, वो 2002-2017 बोथ जो शूट किया था मैं, उन दोनों को मिलाकर है।
तो ये पिछले 15 साल में आपने अमर्त्य सेन से अलग अलग वक्त पे इंटरव्यू किया, बातचीत की, तो उसमें एक मेन थीम क्या निकल के, अगर आप उसको एक सेंटेंस नहीं लेकिन 4-5 वाक्यों में कह सकें कि अमर्त्य सेन में 2002 से लेकर 2017 में मेन थीम जो इमर्ज करके आई वो क्या थी?
देखिए, जो चेंज हुआ है 2002 से 2017 में, अमर्त्य सेन जो काम किया है उसके सारे जीवन में, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सब लेके, ये एक
मैं बोलूंगा कि गहरे संकट में है ये सब इश्यूज. हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं श्योर, बट फॉर इंडिया में द अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी इवन द अमेरिका में और वर्ल्ड में वो जो बढ़ते ही जा रहा है. और अमर्त्य सेन कंसिस्टेंटली ही हैज फॉट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ द वर्ल्ड.
दुनिया भर में जो परिवर्तन हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उनका नतीजा एक अलग तरह से निकल रहा है. लेकिन भी अचानक जब आपकी फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए गई तो गाय, गुजरात, ये मुद्दा कहाँ से आ गया कि आप इसको काट दीजिए, गाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते, गुजरात का इस्तेमाल नहीं कर सकते. पहले तो आप ये बताइए कि कहा क्या गया है आपसे.
हमको बोला है कि द फिल्म विल गेट ए यूए सर्टिफिकेट, लेकिन हमको चार जगह में भी बैठाना पड़ेगा उनके वर्ड्स के ऊपर. सो गुजरात बोले एंड अमर्त्य सेन मेंशंस गुजरात, वो गुजरात राइट्स के बारे में बोला था, क्रिमिनलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द गुजरात राइट. नाउ वो गुजरात नहीं बोल सकते हैं. सो ये एक था. फिर हिंदू शब्द, हिंदू इंडिया बोला था, यू नो द कंट्री इज बीइंग इंटरप्रेटेड इन नैरो टर्म्स लाइक हिंदू इंडिया. सो वो हिंदू शब्द में, और हिंदुत्व एक बोला था अमर्त्य सेन उनके बारे में, और काउ. सो इन पासिंग वो एक मेंशन किया था ये काउ स्लॉटर के जो प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में उनको लेके. सो काउ बात बीप कर देना चाहिए. सो ये सब मुझे तो बहुत अजीब लगा मैं जब पहला बार सुना हमको बोल दिया गया है.
अच्छा ये भी बता दीजिए कि ये किसकी तरफ से आया, किसने कहा, फोन पे कहा, चिट्ठी लिखी है, कोई ऑर्डर हुआ है?
परसों हमारे फिल्म का स्क्रीनिंग था ये कलकत्ता का रीजनल ऑफिस में. स्क्रीनिंग के बाद उन लोग हमको बुलाया, द मेंबर्स हु वेयर हु जो फिल्म देखा था, और बुला के फेस टू फेस हमको बोला कि ये चेंजेस अगर करोगे तो फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिल जाएगा.
फिल्म निर्देशक सुमन घोष से बात कर रहे थे राजेश जोशी. अपनी बढ़ती उम्र की चिंता पीछे छोड़ अमरीका की वीनस विलियम्स विंबलडन के महिला एकल वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं. वहीं भारत के रोहन बोपन्ना का अभियान कल मिश्रित युगल में भी क्वार्टर फाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया. विंबलडन से पवन सिंह अतुल.
बीबीसी हिंदी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है. मेरा नाम पवन सिंह अतुल है. विंबलडन टूर्नामेंट में इस साल का महिला सिंगल्स का फाइनल स्पेन की गर्बिन मुगुरुसा और अमेरिका की वीनस विलियम्स के बीच होगा. महिला सिंगल्स का पहला सेमीफाइनल एक तरफा मैच रहा. इस मैच में स्पेन की गर्बिन मुगुरुसा ने स्लोवाकिया की मैग्डालेना रिबारिकोवा को 6-1 से हराया. इस मैच से पहले रिबारिकोवा ने इस साल ग्रास कोर्ट पर खेले 19 में से 18 मैच जीते थे. मैच के बाद मुगुरुसा ने कहा,
well, I think I played very well for sure. It was a tricky match, you know, she's a very talented player and she...
ये मुश्किल मैच हो सकता था क्योंकि रिबारिकोवा बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं. मैं आज आत्मविश्वास से भरी हुई थी, मैंने तैयारी भी बेहतर की थी. दूसरे सेमीफाइनल में वीनस विलियम्स और ब्रिटेन की योहाना कोंटा के बीच मुकाबले में 37 साल की वीनस भारी पड़ी. वीनस ने सेंटर कोर्ट पर बढ़िया टेनिस खेलते हुए लगभग एक तरफा दर्शकों के बीच कोंटा को 6-4, 6-2 से मात दी. वैसे 1994 में मार्टिना नावरातिलोवा के बाद वीनस विलियम्स किसी भी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में खेलने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई हैं. वीनस ने अपना पहला विंबलडन खिताब 2000 में जीता था और आखिर 2008 में. मैच के बाद इस बारे में पूछे जाने पर वीनस ने कहा,
I've played a lot of finals here. It's been a blessing. I couldn't have asked for more, but I'll ask for a little more.
मैंने यहाँ बहुत सारे फाइनल खेले हैं. यहाँ एक और जीत जबरदस्त बात होगी और मैं उस जीत के लिए जी जान लगा दूंगी. मैं यहाँ दर्शकों की तारीफ करना चाहूंगी. मुझे मालूम है कि यहाँ दर्शक कोंटा को बहुत चाहते हैं, लेकिन आज उन्होंने मेरा समर्थन किया. कल मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और गैब्रियला डाब्रोवस्की की जोड़ी हेनरी कॉन्टिनेन और हैदर वाटसन से हार गई. एक कड़ी टक्कर में कॉन्टिनेन और वाटसन ने बोपन्ना और डाब्रोवस्की को 6-7, 6-4, 7-5 से हराया. आज सेंटर कोर्ट पर विंबलडन में पुरुष एकल मुकाबलों के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे. पहला मैच अमेरिका के सैम क्वेरी और मार्टिन चिलिच के बीच होगा. दूसरे सेमीफाइनल में रोजर फेडरर और टॉमस बर्टिक आमने सामने होंगे. पवन सिंह अतुल, बीबीसी विंबलडन.
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर.
बीबीसी समाचार. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते पर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं. चीन के प्रमुख राजनीतिक विरोधी और नोबेल पुरस्कार विजेता लू शाओबाओ का निधन हो गया है. वे कैंसर से पीड़ित थे. जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वो यूरोजोन के लिए बजट तय करने के लिए बातचीत करने की इच्छुक हैं. मिस्र में चर्च के पदाधिकारियों का कहना है कि जिहादियों से मिल रही धमकियों को देखते हुए वे अपनी गतिविधियाँ सीमित कर रहे हैं. बीबीसी समाचार.
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की राजेश चौहान ने। रिहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।